गांव में बाढ़ एवं बीमारियों के कारण पूरा गांव तहस नहस हो गया था, जिसके कारण पूरे गांव के लोग बहुत चिंतित थे।
इस साल धान न होने के कारण बहुत कठिनाई हो रही है, धान के बिना हमारे बच्चे मर जाएंगे।
धान की कठिनाई थी और उस पर इतनी सारी बीमारियां जिसके कारण हमारे कष्ट दुगने हो गए हैं।
मैं वही चिंता में हूं कि ऐसी स्थिति में मेरी बेटी का ब्याह कैसे करूंगा।
बाबा आ गए, ये हमारे सभी दुखों को मिटा देंगे। इन्होंने हिमालय में बहुत तपस्या की और तपस्या की शक्ति के कारण वो भगवान बन गए हैं। क्या तपस्या की है?
6 महीनों तक जमीन के अंदर रहकर ध्यान और तपस्या की है।
उसमें क्या आश्चर्य की बात है, वो तो एक सामान्य बात है जो एक मेंढक भी करता है, उससे थोड़ा कोई भगवान बन जाएगा। उसको गांव में मत घुसने दो।
अरे अरे अरे, देखो और एक चमत्कारी बाबा आ गए। अरे देखो वो आ रहे हैं।
शांति शांति शांति।
कैसी शांति? हम सभी इतने कष्ट में हैं, हम जीवित लाश की तरह हैं।
ये कोई सामान्य बाबा नहीं है, ये परम सिद्ध बाबा है। 10 साल तक पानी में रहकर तपस्या की है। ये पानी पर भी चल सकते हैं और आप सभी को सिखाएंगे कि कैसे आप भी उन्हीं की तरह भगवान बन सकते हैं।
अरे मारो इसको, पानी पे तो जल गिलहरी भी चलती है, उससे थोड़े कोई भगवान बन जाता है। मारो मारो।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।
क्या आप ये मंत्र का जाप करने से भगवान बन जाएंगे? आप क्यों हंस रहे हैं, कृपा करके बताइए ना।
हम कभी भगवान नहीं बन सकते, हम सब जीवात्मा हैं और भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। कृष्ण भगवान हैं क्योंकि वे सर्व आकर्षक हैं। यदि किसी के पास अत्यधिक धन होता है तो वो सामान्यतः जनता के लिए आकर्षक हो जाता है। इसी प्रकार यदि कोई अत्यंत शक्तिशाली बन जाता है, यदि कोई अत्यंत सुंदर या ज्ञानी या सभी प्रकार की संपदा से अनासक्त होता है तो भी वो आकर्षक होता है।
आपकी बात तो सही है।
अतएव हम अनुभव के आधार पर ये देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति संपत्ति शक्ति यश सौंदर्य ज्ञान तथा त्याग के कारण आकर्षक बनता है। जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य एक साथ हों और असीम मात्रा में हों तो ये समझना चाहिए कि वो भगवान है।
लेकिन कृष्ण कैसे भगवान हो गए?
वे इस पृथ्वी पर 125 वर्षों तक रहे और मनुष्य के समान ही आचरण किया, लेकिन उनके कार्यकलाप अद्वितीय थे। उनके जन्म के क्षण से लेकर उनके तिरोधन के क्षण तक उनका प्रत्येक कार्य विश्व के इतिहास में अद्वितीय रहा।
हाँ वो बात तो सही है। अभी वे शिशु थे और ठीक से देख भी नहीं सकते थे, तभी उन्होंने पूतना का वध किया, स्तनपान करते हुए उसके प्राण ले लिए।
जब वे 1 वर्ष के हुए तो बवंडर के वेश में तृणावृत असुर उन्हें उड़ाकर आकाश में बहुत ऊंचाई तक ले गया। तब वे उस असुर की गर्दन पर लटक गए और उसे आकाश से नीचे गिरा दिया, जिससे वो तुरंत मर गया।
इसी तरह एक बार वे अपने बड़े भाई बलराम के साथ बछड़े चरा रहे थे तो बकासुर प्रकट हुआ। कृष्ण ने तुरंत इस असुर की चोंच के दो खंड कर दिए।
अतः जो भी ये जानता है कि भगवान का क्या अर्थ होता है, वो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर लेगा। ना तो कोई भगवान के समकक्ष है, ना ही कोई उनसे बढ़कर है। ईश्वर महान है, कथन का यही आशय है। यही कथन विष्णु पुराण में भी वर्णित है। जिसके पास ये छह ऐश्वर्य एक साथ हो और असीम मात्रा में हो, तो ये समझना चाहिए कि वो भगवान है।
लेकिन बाबा तो कह रहा था कि वो भगवान है क्योंकि वो पानी में चल सकता है, और दूसरा एक कहता था कि वो पृथ्वी के अंदर रह सकता है, तो वो
आजकल ये फैशन बन गया है कि नास्तिक श्रेणी के कुछ लोग योग विधियों के द्वारा ईश्वर बनने का प्रयत्न करते हैं। सामान्यतः ऐसे नास्तिक अपनी कल्पना या ध्यान शक्ति के बल पर अपने को ईश्वर घोषित कर देते हैं। कृष्ण इस प्रकार के ईश्वर नहीं है। वे न तो ध्यान की कोई योग विधि का निर्माण करके ईश्वर बनते हैं, न ही योगिक आसनों की कठोर तपस्या करके ईश्वर बनते हैं। सच बात तो यह है कि वे कभी भी ईश्वर नहीं बनते, क्योंकि वे समस्त परिस्थितियों में सर्वेश हैं।
आपकी बात सही है, कृष्ण ही सर्व आकर्षक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है।
आपकी बात सही है।
जय श्री कृष्ण,
जय श्री कृष्ण,
जय श्री कृष्ण,
जय श्री कृष्ण,
जय श्री कृष्ण।
रामा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
मैंने तुमसे कहा था कृष्ण के साथ भीतर खेलना, कहाँ है कृष्ण?
वो भीतर है माता।
नहीं, फिर नहीं। बलराम तुमने मटकी फोड़ी? सत्य बताओ मुझे, ये 3 दिन में दूसरी मटकी फूटी, अभी सत्य बताओ मुझे।
यहाँ कृष्णा था माते, उसने ही फोड़ी होगी मटकी।
कृष्ण? वो नन्हा सा, उसने कैसे उतारी होगी मटकी?
मैं सत्य कह रहा हूँ माता, उसने ही फोड़ी होगी मटकी। तुम मुझसे पूछो।
हाँ हाँ, उससे अवश्य पूछूंगी। चलो तुम स्नान घर जाके हाथ मुंह धो लो। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अरे कृष्ण।
क्या है भैया?
सामने आओ, ये माखन की मटकी तुमने फोड़ी है?
माखन मटकी ना मैया, मैं तो भीतर खेल रहा था।
मुझे तुम्हारा विश्वास नहीं। यहाँ आओ, तनिक अपना मुंह खोलो, अभी पता चल जाएगा तुम सत्य कह रहे हो या कि झूठ बोल रहे हो। कृष्ण, ए कृष्ण, भागो मत, ठहरो, यहाँ रुको। अब मुझे पता चला कौन है ये माखन चोर। आज मैं तुम्हें अच्छा पाठ पढ़ाऊंगी, मटकी फोड़कर माखन चुरा।
तनी पकड़ो तो मुझे।
रुको, मुझे और ना दौड़ाओ, आज तुम नहीं बचोगे। बलराम तुम सामने से हटो। अब तुम चलो। हाँ बलराम, तुम हाथ मुंह धो लो। मैं नन्हे नटखट से आज सत्य जान कर रहूंगी। कृष्ण तुम बहुत नटखट होते जा रहे हो, क्यों फोड़ते हो मटकी और माखन क्यों चुराते हो, बोलो। अरे ये क्या, तुमने मिट्टी क्यों खाई? चलो मुंह खोलो।
नहीं, मैंने मिट्टी नहीं खाई, सब झूठ बोलते हैं।
नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। चलो मुंह खोलो, मैं देखूंगी। हे भगवान, एक बालक के मुंह में पूरी सृष्टि कैसे दिखाई दे रही है? हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? हे भगवान,
जागो मैया, जागो ना मैया, जागो ना।
मैं सुध-बुध क्यों खो बैठी? क्या हुआ? मुझे कुछ याद नहीं।
नहीं मैया, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, चलो।
कृष्ण तुम मुझे फिर तो ना सताओगे?
नहीं मैया, कभी नहीं।
नटखटपन हर दिन बढ़ता जा रहा है। कृष्ण क्या करूं मैं तेरा, समझता ही नहीं है। बहुत हुआ, अब मेरी सहन शक्ति समाप्त हुई। आज मैं तुम्हें बांध दूंगी, फिर देखूं तुम कैसे माखन चुराते हो। रस्सी छोटी क्यों पड़ गई? कृष्णा कृष्णा बंधे रहो, अब समझ में आएगा।
Thank you. हे भगवान, हमें मुक्ति दी, धन्यवाद। हम दोनों कुबेर के पुत्र हैं, नल कुबेर और मनीग्रीव। हमारे नटखटपन से तंग आकर नारद जी ने हमें श्राप देकर अर्जुन के वृक्ष बना दिए थे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान, नारद जी ने कहा था आप स्वयं इन पेड़ों को गिराकर हमें इस श्राप से मुक्ति देंगे, और वो दिन आ गया। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो।
देखो तो, वो गौ हमारे समूह की नहीं लगती।
वह गौ नहीं, राक्षस है, देखो तो।
देखो देखो कितना बड़ा है, उसके दंत कितने भयानक हैं।
हाँ हाँ, कितने बड़े और कितने नुकीले।
कृष्ण, तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि वो राक्षस है?
भैया, क्या तुम कागा की भांति काव काव कर सकते हो?
काई 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 काई।
कृष्ण, क्या तुम मोर की भांति नृत्य कर सकते हो?
हाँ हाँ।
Oh, oh, oh. मित्रों देखो ना, ये स्थान कलिवा करने तथा यमुना के रेतीले तट पर खेलने के लिए कितना सुंदर है। देखो ना, जल में ये कमल पुष्प किस प्रकार हिल रहे हैं और चातुर्दिक अपनी सुगंध बिखेर रहे हैं। पक्षियों का कलरव और मोरों की केका वृक्षों की पत्तियों की सरसराहट से मिलकर ऐसी ध्वनि उत्पन्न करते हैं जिसे प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। इससे यहाँ के वृक्षों द्वारा उपस्थित दृश्यावली में श्री वृद्धि होती है। चलो चलो हम सब यही कलेवा करें और यमुना का जल पिए।
हुआ था कि किस प्रकार कृष्ण जैसा छोटा सा बालक इतने आश्चर्य में कार्य कर सकता है। यद्यपि उन्हें बताया जा चुका था कि ये नन्हा ग्वाली बाल श्री भगवान है, किंतु वे भगवान को अन्य यशस्वी लीलाओं में देखना चाह रहे थे, अतः उन्होंने सारे ग्वालों तथा बछड़ों को हड़प लिया और उन्हें दूसरे स्थान में ले गए।
ब्रह्मा ने सारे बालकों तथा बछड़ों का अपहरण कर लिया है। अब मैं वृंदावन कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा? सबकी माताएं अत्यंत शोकाकुल होंगी।
अतः अपने मित्रों की माताओं को प्रसन्न करने तथा ब्रह्मा को श्री भगवान की सर्वोच्चता से आश्वस्त कराने की दृष्टि से उन्होंने तुरंत ही ग्वालों तथा बछड़ों के रूप में अपना विस्तार किया। वेदों में कहा गया है कि श्री भगवान अपनी शक्ति के द्वारा असंख्य जीवों के रूप में विस्तार करते हैं, अतः उनके लिए इतने बालकों तथा बछड़ों के रूप में विस्तार करना कोई कठिन काम नहीं था। उन्होंने अपना विस्तार उतने ही बालकों के रूप में किया जो विभिन्न आकृति मुख तथा शरीर की बनावट वाले एवं अपने वस्त्रों तथा आभूषण में आचरण तथा व्यक्तिगत कार्यकलापों में भिन्न भिन्न थे।
ये तो आग के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। कृष्ण मेरे स्वामी है और मैंने कौतुकवशी उनके बछड़े तथा बालक चुराए हैं। मैंने तो सारे बालक बछड़े तथा गोवें चुरा ली थी और मुझे ज्ञात है कि वे अब भी सो रहे हैं। तो फिर ये कैसे संभव है कि वैसे ही बछड़े गोवें तथा बालक कृष्ण के साथ लीला कर रहे हैं? हे भगवान, आप ही एकमात्र आराध्य परमेश्वर हैं। ग्वाल बाल के रूप में आपका जन्म भक्तों के लाभ के हेतु हुआ है और यद्यपि मैंने आपकी गाय बछड़े तथा बालक चुराकर आपके चरण कमलों के प्रति अपराध किया है, किंतु तो भी आप मुझ पर दया करें। ये आपका दिव्य गुण है कि आप अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल रहते हैं। मैं अपने प्रति आपका स्नेह होते हुए भी आपकी शारीरिक शक्तियों की क्षमता का अनुमान नहीं लगा सकता।
इस लीला से हम समझ सकते हैं कि भगवान को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भगवान असीमित है, परंतु भगवान को प्रेममय सेवा से समझ सकते हैं।
पिताजी, विशाल यज्ञ के लिए ये सारा प्रबंध क्यों हो रहा है? इस यज्ञ का क्या फल है और ये किसके निमित्त है? कृपा करके मुझे बताएं, क्योंकि मैं इसका उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। अतः आप मुझे इस यज्ञ का प्रयोजन बता दें जिसे आप करने जा रहे हैं। क्या ये वैदिक आदेश अनुसार है या ये केवल लौकिक उत्सव है?
मेरे बेटे, ये उत्सव न्यूनाधिक परंपरागत है। चूंकि वर्षा राजा इंद्र की कृपा से होती है और बादल उसके प्रतिनिधि हैं, और चूंकि हमारे जीवन के लिए जल इतना महत्वपूर्ण है, अतः हमें वर्षा के नियामक महाराज इंद्र के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। अतः हम राजा इंद्र को प्रसन्न करने का प्रबंध कर रहे हैं, क्योंकि उसने कृषि कर्मों को सफल बनाने के लिए ही बादलों को प्रचुर वर्षा करने के लिए भेजा है।
हे पिता, मेरे विचार से अपने कृषि कार्यों की सफलता के लिए आपको किसी भी देवता के पूजने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार उत्पन्न होता है और वर्तमान कर्म के फल को भोगकर इस जीवन को त्याग देता है। प्रत्येक जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध योनियों में जन्म ग्रहण करता है और इस जीवन में जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार अगला जन्म पाता है। यदि आप इंद्र को प्रसन्न ना भी करें तो वह क्या कर सकता है? हमें इंद्र से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। हमारा संबंध गोवर्धन पर्वत तथा वृंदावन के जंगल से है, अन्य कहीं से नहीं। अतः हे पिता, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ऐसा यज्ञ करें जिससे स्थानीय ब्राह्मण तथा गोवर्धन पर्वत संतुष्ट हो सके। हमें इंद्र से कोई सरोकार नहीं है।
मेरे बेटे, चूंकि तुम कह रहे हो इसलिए मैं स्थानीय ब्राह्मणों तथा गोवर्धन पर्वत के लिए एक पृथक यज्ञ का आयोजन किए देता हूँ, किंतु इस समय मुझे ये इंद्र यज्ञ करने दो।
पिताजी, आप विलंब ना करें। आप गोवर्धन पर्वत तथा स्थानीय ब्राह्मणों के लिए जिस यज्ञ का प्रस्ताव रख रहे हैं उसमें काफी समय लगेगा। अतः अच्छा हो यदि इंद्र यज्ञ के लिए आपने जितनी तैयारियां की है उनसे तुरंत गोवर्धन पर्वत तथा स्थानीय ब्राह्मणों को संतुष्ट कर दिया जाए।
जरा वृंदावन वासियों का अभिमान तो देखो, वे जंगल के रहने वाले हैं, किंतु अपने मित्र कृष्ण के बहकावे में आकर, जो एक सामान्य मनुष्य से अधिक कुछ नहीं है, देवताओं को ललकारने का दुस्साहस कर रहे हैं। ये वृंदावन वासी अपने ऐश्वर्य तथा इस नन्हे मित्र पर विश्वास करने के कारण अत्यंत गर्वित हो उठे हैं। वो केवल वाचाल, क्षुद्र तथा परिस्थिति से अनभिज्ञ है, किंतु वो अपने को ज्ञान में बड़ा चढ़ा मानता है, क्योंकि वे कृष्ण को मानते हैं। अतः उन्हें दंड मिलना चाहिए। इसीलिए मैंने सामर्थ को आदेश दिया है कि वो वहां जाकर उस स्थान को जल से अप्लावित कर दे, उन्हें गांवों समेत नष्ट कर दे।
कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक वत्सल हैं। कुपित इंद्र ने हम सबको सता रखा है, अतः हमारी रक्षा करें, अतः हमारी रक्षा करें।
अपने को परम शक्तिशाली समझने वाले इस देवता ने अपने महान पराक्रम को दिखा दिया, किंतु मैं अपने पद के अनुसार इसका उत्तर दूंगा और उसे दिखा दूंगा कि ब्रह्मांड के कार्यों को चलाने में वह स्वतंत्र नहीं है। मैं इसके गर्भ को चूर चूर कर दूंगा। मैं वृंदावन के अपने सारे भक्तों को शरण दूंगा, क्योंकि वह मेरी कृपा पर निर्भर है और मैंने उन्हें शरण दे रखी है। मैं अपनी योग्य शक्ति से उन्हें बचाऊंगा। हे भाइयों, हे पिता, हे वृंदावनवासियों, अब आप मेरे द्वारा उठाए गए इस गोवर्धन पर्वत के छत्र के नीचे कुशल पूर्वक प्रवेश करें। इस पर्वत से डरे नहीं और ये भी ना सोचे कि ये मेरे हाथ से गिर जाएगा। आप लोग मूसलाधार वर्षा तथा प्रचंड वायु से अत्यधिक पीड़ित हैं, अतः मैंने उसे उठा लिया है और ये बहुत बड़े छाते के समान आपकी रक्षा करेगा। हे ग्वालो, अब तुम लोग अपनी पत्नियों, गैयाओं तथा धन सहित यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि सारा उत्पात समाप्त हो चुका है। नदी की बाढ़ तथा ये जल पलावन समाप्त हो गया है।
हे प्रभु, मैंने अहंकार वश सोचा कि आपने ग्वाले को इंद्र यज्ञ करने से रोककर मेरा अपमान किया है और आप स्वयं यज्ञ की सारी सामग्री का भोग करना चाहते हैं। मैंने सोचा कि आप गोवर्धन पूजा के नाम पर मेरा भाग ग्रहण कर रहे हैं, अतः मैंने आपको गलत समझा। अब आपकी कृपा मैं समझ पाया हूं कि आप परमेश्वर श्री भगवान हैं और समस्त भौतिक गुणों से परे हैं। आपकी स्थिति विशुद्ध सत्वम की है, जो सतोगुण के पद से ऊपर है, और आपका दिव्य धाम भौतिक गुणों के उत्पाद से परे है।
कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष
मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं यहां अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूं। मैं अपने को भूल रहा हूं और मेरा सिर चकला रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं।
लेकिन तुम्हें राज्य प्राप्त होगा अर्जुन।
नहीं चाहिए ऐसा राज्य, और ना ही इस युद्ध में अपने स्वजनों का वध करने में अच्छाई दिख रही है। हे गोविंद, इस राज्य सुख अथवा जीवन के आनंद का क्या लाभ होगा जब वो लोग ही नहीं रहेंगे जिनके साथ हम उस आनंद को बांट सके।
तुम्हें सत्य का ज्ञान नहीं है अर्जुन।
मुझे मालूम है कि इसका परिणाम क्या निकलेगा। पूरे कुल का विनाश हो जाएगा। हम क्यों नहीं युद्ध रोक देते कृष्ण, क्यों नहीं रोक देते?
लेकिन क्षत्रिय का कर्तव्य है कि चुनौती होने पर उसे युद्ध करना चाहिए।
लेकिन मैं देख सकता हूं कि इससे पूरे कुल का विनाश हो जाएगा। कुल का विनाश होने पर सनातन कुल की परंपरा नष्ट हो जाती है और शेष कुल भी अधर्म में चला जाता है।
युद्धभूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त के साथ रथ के आसन पर बैठ गया।
हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को त्याग दो, तुम्हें यह शोभा नहीं देती। हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ।
कृष्ण, ये नपुंसकता नहीं है, ये नपुंसकता नहीं है। ये धर्म के आधार पर अच्छाई या बुराई की पहचान है। जब मैं भीष्म पितामह और द्रोण को देखता हूं तो मेरा हृदय पसीज उठता है।
यह हृदय की कमजोरी है अर्जुन, इसे त्याग दो। तुम पार्थ हो, इंद्रदेव के पुत्र हो।
ये हृदय की दुर्बलता नहीं, करुणा है कृष्ण, करुणा।
इसे त्याग दो अर्जुन, युद्ध के लिए तैयार हो। तुम परमतप हो, शत्रुहंता हो। लोगों की हंसी का पात्र मत बनो। भले ही तुम युद्ध करो या न करो, उनको अपना शरीर तो बदलना ही है। जैसे कोई व्यक्ति अपने पुराने या बेकार वस्त्रों को बदलकर नए धारण करता है, ये शोक का कारण नहीं है, ये तो सुख का कारण है। ये उनके भले के लिए है, नहीं तो वे बूढ़े होकर दुख भोगेंगे। किंतु अर्जुन, युद्ध में मरने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। युद्ध करने से किसी को हानि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि आत्मा ना तो किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड की जा सकती है, ना अग्नि द्वारा जलाई जा सकती है, और ना ही जल द्वारा भिगो या वायु द्वारा सुखाई जा सकती है।
लेकिन कृष्ण, जब घर जलते हैं तो उसके अंदर रहने वाले प्राणी भी तड़पते हैं, तो क्या शरीर के नष्ट होने पर आत्मा को हानि नहीं पहुंचेगी?
नहीं अर्जुन, आत्मा को कुछ भी हानि नहीं हो सकती।
इस तरह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शिक्षा देते हैं कि तुम शरीर नहीं वरन तुम आत्मा हो, और क्षत्रिय होने के कारण लड़ाई करना तुम्हारा धर्म है। आगे भगवान कहते हैं, सर्वोच्च योग परम पुरुष भगवान पर ध्यान करना है, अपना मन
सुनकर अर्जुन इस प्रकार कहता है,
हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित हूं तथा दृढ़ हूं और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं।
सर्वाधिक प्रामाणिक स्रोत हैं भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वे संपूर्ण ज्ञान के भंडार हैं। श्री कृष्ण से अधिक ना तो कोई बुद्धिमान है और ना ही जानकार।
स्वयं कितने सुंदर होंगे जिन्होंने समस्त सौंदर्य की